सारी गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेद गौर भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। श्री श्री राधा रस बिहारी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी टू असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 7 तृणाव्रत का वध श्लोक संख्या 37। सावक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वेपतुः। सम्मिल्य मृगशावक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। सावक्ष विश्वं सहसा राजन संजात वेपतु। सम्मिल्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। सावक्ष विश्वं सहसा राजन संजात वेपतु। सम्मिल्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। माता जी शब्दार्थ
सा
माता यशोदा
वीक्षा
देखकर
विश्वम
संपूर्ण विश्व को
सहसा
अचानक अपने पुत्र के मुख के भीतर
राजन
हे राजा महाराज परीक्षित
संजात वे पतु
उनका हृदय धक धक करने लगा
सम्मिल्या
खोलकर
मृगशाव अक्षी
मृगनैनी
नेत्रे
उसकी दोनों आंखें
आसीत
हो गई
सुविस्मिता
आश्चर्यचकित। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। जब यशोदा माता ने अपने पुत्र के मुखारविंद में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा तो उनका हृदय धक धक करने लगा तथा आश्चर्यचकित होकर वे अपने अधीर नेत्र बंद करना चाह रही थी। तात्पर्य, माता यशोदा ने शुद्ध मात्र प्रेम के कारण सोचा कि यह अद्भुत बालक जो तरह तरह से खेल रहा है अवश्य ही रोगग्रस्त है। उन्होंने बालक द्वारा प्रदर्शित आश्चर्य की प्रशंसा नहीं की, प्रत्युत वे अपनी आंखें मूंद लेना चाहती थीं। उन्हें अन्य खतरे की संभावना थी, इसलिए उनकी आंखें मृगी के बच्चे की आंखों के समान अधीर हो गई। यह सब योग माया की व्यवस्था थी। माता यशोदा तथा कृष्ण के बीच शुद्ध मात्र प्रेम का संबंध है। इसी प्रेम के कारण माता यशोदा भगवान के ऐश्वर्य प्रदर्शन को ठीक से समझ नहीं पाई। इस अध्याय के प्रारंभ में कहीं कहीं दो अतिरिक्त श्लोक प्रकट होते हैं, एवं बहुनि कर्माणि गोपानां शम सयोषिताम नंदस्य गेहे विवृद्धे कुर्वन विष्णु जनार्दनः। इस तरह असुरों को दंड देने और उनका वध करने के लिए बालक कृष्ण ने नंद महाराज के घर में अनेक लीलाएं प्रदर्शित की और ब्रजवासियों ने इन घटनाओं का आनंद लिया। एवं सब वृद्धे विष्णुर नंद गेह जनार्दन कुर्वन अनिशमानंद गोपालाम स योषिताम। गोपों तथा गोपियों के दिव्य आनंद वर्धन के लिए समस्त असुरों के वध करता कृष्ण अपने पिता तथा माता नंद एवं यशोदा द्वारा इस तरह पाले गए। श्रीपाद विजय ध्वज तीर्थ ने इस अध्याय के तीसरे श्लोक के बाद एक अन्य श्लोक जोड़ दिया, विस्तरेह कारुण्यात सर्वपाप प्रशासनम प्रणाशनम वक्तुम अर्हसि धर्मज्ञ दयालुस्तवमिति प्रभो। तब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण लीलाओं से संबंधित ऐसी कथाएं कहने का अनुरोध किया जिससे राजा उनसे दिव्य आनंद प्राप्त कर सकें। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के दसवें स्कंध के अंतर्गत तृणाव्रत का व्रत नामक सातवें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अनुवाद दोहराइए, जब यशोदा माता ने अपने पुत्र के मुखारविंद में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा तो उनका हृदय धक धक करने लगा तथा आश्चर्यचकित होकर वे अपने अधीर नेत्र बंद करना चाह रही थीं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम्।
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितंश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते हय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में नमस्ते सरस्वती देवे नहीं है, बहुत भक्त ऐसे ही बोलते हैं, ये सारस्वते है। सरस्वती सिद्धांत के शिष्य सारस्वते, सरस्वती नहीं है। एटलीस्ट जो सिंपल कई बार भक्तों से गुरुवाष्टकम में भी पढ़ना चाहिए, बीच बीच में हम बहुत साल से गा रहे हैं, कभी एक बार पढ़ना चाहिए तो पता पड़ेगा कहीं पे गलती हो रही है, नरसिंह आरती में तुलसी आरती में ऐसे भक्त लोग आते हैं। भजे राधा कृष्ण, भजे तो दिया नहीं है उसमें। हाँ, कोई बोलता है भजे, एक्चुअली चालू हुआ था व्रजे से, व्रजे राधा कृष्ण, व्रजे से भजे हो गया, आगे पता नहीं क्या क्या होगा कि ब्रज के राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण हो गया तो ब्रज बोलने का जरूरत नहीं है। जो आचार्यों ने लिखा है वी शुड रिपीट दैट, तो सारस्वते है सरस्वती नहीं। तो इस अध्याय के प्रारंभ में, पूतनावध के बाद, पूतनावध पिछले अध्याय में पूर्ण हुआ, महाराज परीक्षित कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि रुकिए मत। उनको लगा कि एकाध कथा, क्योंकि अभी तक क्या हुआ, 9 स्कंद जो हुए वो तो थोड़ा थोड़ा बता के आगे निकल गए, लेकिन अभी तो दशम स्कंद प्रारंभ हुआ, पहला ही लीला तो भगवान का था पूतनावध। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि प्रभु यहां रुकिए मत, चलने दीजिए। तो कितना दिन हो गया था, लगभग 4 दिन हो गए थे, 4 दिन से थोड़ा ऊपर हो गया था। 18,000 श्लोक में से दशम स्कंद में 4,500 श्लोक हैं, 25%, तो 4 दिन के ऊपर हो गया था। अभी ये चलेगा, फिर 11वां स्कंद भी बड़ा है, 4.5 दिन हो गया था एक्चुअली, तो भी वो रुक नहीं रहे हैं। और कह रहे हैं कि इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है, तत्क्षण उसी समय। तो भागवत श्रवण का महिमा यहां बताया सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज कह रहे हैं सामान्यतः हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं। महाराज परीक्षित राजा है ना, तो प्रजा सिर्फ अपने बारे में जानती है, राजा अपने और प्रजा दोनों के बारे में जानते हैं। तो महाराज परीक्षित तो आनाकानी नहीं किए कभी सुनने में, लेकिन वो जानते हैं कि प्रजा का क्या परिस्थिति है और आने वाले समय में क्या परिस्थिति होगा। किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहानी लगती हैं।
और इतनी सुहानी लगती है कि नींद आ जाती है। कभी कभी होता है ना, अच्छा मौसम है, एकदम मस्त ठंडी 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 हवा चल रही है, तो कृष्ण कथा भागवतम को तो ऐसा भी बोला जाता है ना, जैसे चंद्रिका, अभी कल पूर्णिमा थी, आप सवेरे तुलसी आरती के समय देखिए, यहीं पे चंद्र रहता है, पूरा आंगन में उसका आभा आता है और ठंडा रहता है, तो कई बार नींद अच्छी आती है। तो ऐसे ही कृष्ण कौन है? कृष्ण चंद्र, कृष्ण तो ब्रज के चंद्र है ना, तो जब उनका कथा या कृष्ण चंद्र उदित हो रहे हैं और बड़ी अच्छी हवा बह रही है, तो नींद भी अच्छी आती है। लेकिन हमको सावधान होना चाहिए। तो भौतिक वस्तुओं के विषय के सुनने में जितनी हमारी अनुरक्ति है, उतना हम संसार के भव बंधन में फंसते हैं, और जितना कृष्ण कथा के सुनने में हमारा रुचि बढ़ेगा, उतना भव बंधन से छूटेंगे। सिद्धांत हमारा बहुत ही क्लियर, बहुत ही लॉजिकल है, और प्रभुपाद जी ने उसको इतना क्लियर और लॉजिकल और कर दिया, इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया कि 1+1=2, ऐसा सिस्टम है। उसके बाद भी हम देखते हैं संसार में लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो दुर्भाग्य है, एक कली का प्रभाव है। यहां बोल रहे हैं आपके दुखों का कारण क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं दुखों का कारण है ये शरीर। भौतिक संसार में आपने जन्म क्यों लिया? कोई बोलता है मेरे जीवन में बहुत दुख है, तो आपने भौतिक संसार में जन्म क्यों लिया? ठीक है, फिर मैं जाता हूं, जैसे जन्म हुआ अभी मृत्यु ले लेता हूं। तो भौतिक संसार में जो ये सुसाइड वाला मृत्यु नहीं लेना है, मृत्यु इस भौतिक जगत से हमेशा के लिए लेना है। तो यही कारण है हमारे भव बंधन का, दुखों का। तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा सुख। सो दुख आया है ये भौतिक शरीर से, भौतिक चेतना से, तो सुख आएगा जब आध्यात्मिक शरीर और आध्यात्मिक चेतना बनेगी। तो हमको यहां से यहां तक का जो सफर है उसको तय करना है, बस इतना ही तो है। अब इसमें कभी स्पीड ब्रेकर आएगा, कभी कुछ खड्डे आएंगे, तो कभी गाड़ी पंक्चर हो जाएगी। किसी ने वीडियो भेजा एक, वो बाइक वाला रेसिंग होता है ना, तो फॉर्मूला वन तो कार वाला होता है, बाइक रेसिंग होती है। तो भक्तिनाथ ठाकुर जो कहते हैं वो बात कितना सही है कि हमें जो भौतिकवादी हैं उनसे भी प्रेरणा मिलती है या लेनी चाहिए। तो एक व्यक्ति, ये जो रेसर था, वो बाइक चला रहा था और इनका गाड़ी का स्पीड 250-300 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर ही होता है, स्पीड चलाते चलाते। और आप कभी बचपन में देखा होगा तो लोग पूरा गाड़ी जब ऐसे मोड़ते हैं तो पूरी गाड़ी सो जाती है, है ना? लेकिन जैसे ही मोड़ पूरा हो जाता है फिर वो गाड़ी को सीधा कर लेते हैं। हमारी गाड़ी सो जाती है तो फिर सीधा करना चाहिए उसको। तो उस वीडियो में क्या दिखाया कि वो जब गाड़ी मोड़ रहा था उसकी गाड़ी पूरी पलट गई और वो कूद गया, और वो भी पलटते 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 फेंका गया। अब क्या करता, हेलमेट निकालता, अपना पैडिंग वगैरह निकाल के बैठता, दुख मनाता। लेकिन उसने क्या किया, वो भागा दौड़ के, दौड़ा पवेलियन की तरफ, क्योंकि इनके तो और गाड़ियां खड़ी होती है, दूसरी गाड़ी उठाया, रेस में फिर से गया और फर्स्ट आ गया। सोचिए, ये कोई कथा नहीं है, ये सच में हुआ है। तो जो व्यक्ति
नहीं जानता है कुछ भी, उसमें इतनी दृढ़ता है, तो हमारे अंदर कितनी दृढ़ता होनी चाहिए कृष्ण कथा कृष्ण नाम सुनने के लिए, सोचिए। एक्चुअली जो लोग भौतिक संसार में दृढ़ होते हैं ना, अगर वो भक्त बनते हैं ना, तो भक्ति में भी दृढ़ होते हैं। तो आप में से कोई जो इस्कॉन में आने से पहले दृढ़ था, भले भौतिक संसार में, लेकिन जो करना है करना है, हार नहीं मानने वाला, वो भक्ति में भी वैसे ही करेगा, उसका नेचर है वो। बिल्वा मंगल ठाकुर, उनका उदाहरण देखिए, कितने दृढ़ थे। क्या नाम था वैश्य को? चिंतामणि। क्या? चिंतामणि। तो चिंतामणि से जब मिलने जा रहे थे, कितने दृढ़ थे, पिता की मृत्यु हो गई है, पिता के शव पे ही नाव बना के जा रहे हैं, सांप को रस्सी समझ के जा रहे हैं, लेकिन जब वो चिंतामणि ने प्रचार कर दिया तो कृष्ण को भी उतनी दृढ़ता से ढूंढा उन्होंने। लेकिन अगर कोई भौतिक संसार में मीडियो कर भी रहा है, तो अभी जागृत होने का समय है उसके पास, अभी दृढ़ हो सकता है। तो वो बता रहे हैं भागवतम का, क्योंकि इस परपट में आया इस चीज को लेके, तब जैसे यहां पे बताया कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण लीलाओं के संबंधित ऐसी कथा कहते रहने का अनुरोध किया, जिससे राजा उसमें दिव्य आनंद प्राप्त कर सके। तो ये सबको समझने वाली बात है। अब ये जो लीला है, छोटी सी लीला है, दो श्लोक में, तीन श्लोक में लीला है। माता यशोदा कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, और माताओं का नेचर होता है, बच्चा उनके सामने बढ़ रहा है ना, उनको हर चीज पता है, बच्चे कितने दांत हैं वो देखते रहती ना, बच्चा गोद में ही रहता है ज्यादातर, या सोया रहता है तो उसका मुंह खोल के कितना दांत आया है, जब दांत निकलता है तो क्या होता है, खुजली होता है, ठीक है, बच्चे को कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसका दांत निकल रहा है, और जब अकल दांत निकलता है तो क्या होता है, इसका निकल रहा है, अकल आती है, तो उसमें दर्द होता है। लेकिन छोटे बच्चों ना जनरली माताएं गिनती हैं कितने दांत हैं, ऊपर कितने नीचे कितने देखते। तो यशोदा माता जब दूध पिला ली कृष्ण को, तो मुख खोल के देख रही है, दांतों को देख रही है, छोटे छोटे दांत, तो देखती थी। लेकिन आज जब उन्होंने देखा, तो कृष्ण ने क्या दिखाया, जनरली आप किसी भी बच्चे को मुंह खोल के देख लीजिए, क्या मिलेगा आपको, सफेद सफेद पूरा लगा रहता है, क्योंकि टंग क्लीनर यूज नहीं कर सकते ना, और माताएं तो वो हाथ डाल डाल के उसका मुंह साफ करती उंगली से, यही रहता है। लेकिन कृष्ण की जो ऐश्वर्य शक्तियां हैं, वो बहुत प्रयास की, कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति ने बहुत प्रयास किया माधुर्य को भंग करने का, उद्देश्य ये नहीं था, उद्देश्य था वो शक्तियां कृष्ण के ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहती थी। तो जैसे ही माता ने मुख खोला, क्या देखा, ब्रह्मांड। दो बार ब्रह्मांड दिखाते हैं, एक बार जब मिट्टी खाए थे वो आगे आएगा, और ये अभी, तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। अभी हमको लगता है अरे कितना अच्छा है ना, भगवान ने माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखाया, हमको भी ऐसा ब्रह्मांड देखने को मिले तो। लेकिन आप सोचिए, कभी कभी ना कथा समझने के लिए उस व्यक्ति के, हमको इमिटेशन नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के चेतना को, यू नो, उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझना जरूरी है। जैसे हम महाराज रहुगण और जड़ भरत की कथा सुनते हैं, तो कई बार हम बोल देते अरे ऐसे कैसे महाराज रहुगण क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन हम उनकी परिस्थिति समझो, राजा है, भागवत श्रवण के लिए जा रहा है, तो राजा होने से वो अहंकार तो रहता है ना,
वह बोल दिया।
तो ऐसे ही माता यशोदा की जगह अगर हम होते, या हम अभी भी कोई बच्चा छोटा सा आप गोद में ले लो, उसका मुंह खोलो और ब्रह्मांड दिख जाए आपको, क्या होगा आपका? ये तो अभी आंख बंद कर लिया, इसकी आंख बंद हो गई, हो ब्रह्मांड देख ही नहीं पाया। तो माता का परिस्थिति को समझना चाहिए कि कोई भी बोलेगा ये क्या है, भूत प्रेत आ गया क्या, वही माता सोच रही कि क्या कोई भूत प्रेत घुसा है। सडनली आपका 6 दिन का बच्चा एक 19 किलोमीटर लंबी पूतना को मार देता है, आप मानोगे आपके बच्चे में इतना शक्ति है? ये तो आपको पता है ना कि कृष्ण भगवान है, यशोदा को तो नहीं पता है ना, यशोदा को तो नहीं पता है कि कृष्ण भगवान है। वो तो हमेशा ही सोचती है कि भगवान नारायण भगवान विष्णु ने रक्षा किया। गोपियां और गोप वृंदावन के बार बार यही कहते हैं कि हमने कुछ पुण्य किए होंगे कि हमारा बच्चा बच गया। त्रिणाव्रत को जब मारे तो पत्थर पे गिराए थे, मुंह बंद कर रखे, गला दबा दिए थे उसका, क्योंकि पूतना चिल्लाई थी। जब मारे थे तो पूतना चिल्लाई थी तो हाहाकार मच गया था, तो बोले ये भी चिल्लाएगा, उसका पहले गला दबा दिए। और जहां यशोदा और अन्य गोपियां बैठी हैं बाजू में बड़ा पत्थर है, पत्थर पे लाके पटक दिए। लेकिन गोपियां क्या सोचती हैं, भगवान नारायण का कृपा को देखिए, क्योंकि त्रिणाव्रत पापी था इसलिए मर गया, हमारा बच्चा पुण्य किया है इसी, नहीं त्रिणाव्रत मर गया, हमारा बच्चा ने पुण्य किया है इसलिए वो मर गया, सर इसलिए बच गया। तो वो ये नहीं देख रही है कि यही भगवान है, अगर वो समझ जाएंगे ये भगवान है तो फिर लीला ही नहीं है। तो ऐश्वर्य शक्तियां जो है भगवान की, वो बार बार प्रदर्शित करती हैं कि भगवान है कृष्ण, भगवान है भगवान है, एक बार भी नहीं माने। जब सूर्य ग्रहण के समय पे, तो भगवद गीता के बाद हुआ था ना, युद्ध हो गया था उसके बाद हुआ था ना, सूर्य ग्रहण पे जो मिलन हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो भी यशोदा और नंद बाबा और गोप वो ये नहीं देखे कि ये राजा है, बड़ा बड़ा उपदेश दिया है अर्जुन को, युद्ध इसी ने जिताया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो मधुमंगल, आप कैसे मान सकते हो कि 7 साल का बच्चा गोवर्धन उठा लेगा? अगर कोई बच्चा है वो KG 1 KG 2 Class 1 Class 2 Class 3 फेल 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 फेल, ग्रेस मार्क्स में पास हो रहा है, वो गवर्नमेंट का कुछ स्कीम है ना कि फेल नहीं करते, बस पास होता आ रहा है। सडनली वो 98% ले आता है 4th class में, विश्वास होगा? नहीं होगा। तो 7 साल का बच्चा जो आपके साथ बढ़ रहा है, आपके सामने पैदा हुआ है, आपने पैदा किया है, वो बढ़ रहा है, कैसे विश्वास कर ले कि इसने गोवर्धन उठा लिया? 7 दिन 7 रात उठाए रखा। दीनबंधु प्रभु बताते हैं कि कृष्ण ने गोवर्धन हाथ पे उठाया था, फिर जब यशोदा माता चिंतित हो गई तो बोलते हैं कि मैया तो चिंतित क्यों होती है, हाथ तो बहुत बड़ा है, ये देख कभी ऐसा कर दिया। आचार्य कहते हैं कि गोवर्धन तो टच भी नहीं, सिर्फ टच होके ही अपने आप एक्सटेसी में था। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि भगवान इंद्र को दिखाना चाहते हैं कि इंद्र तेरी पूरी शक्ति लगा ले, मेरे बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली जो सबसे कमजोर है उसका नाखून भी भारी पड़ जाएगा तेरी पूरी शक्ति पे, लगा ले जितना जोर है। तो हम कहते हैं ना इंद्र पे दया किया कृष्ण ने, कि तो दया इंद्र का जो अभिमान भंग हुआ वो दया है कि नहीं? तो जब हमारा अभिमान भंग होता है इंस्टॉलमेंट में, हम उसको दया नहीं ले पाते। तो इंद्र की परिस्थिति को समझो, राजा है स्वर्ग का, पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, और हम अपना शरीर नहीं संभाल पा रहे हैं। तो हमारा जब अभिमान भंग होता है तो कैसे लेना चाहिए? हम इंद्र का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इंद्र ने कैसे स्वीकार किया,
वो बदल गए बाद में फिर। तो जब गोवर्धन उठाया तो मधुमंगल कहते हैं कि मैं अपने ब्रह्म तेज से, मैंने ब्रह्म शक्ति से, मतलब मैं यहां से मंत्र उच्चारण कर रहा हूं, इससे कृष्ण को शक्ति मिलती है गोवर्धन उठाने की। और सभी गोप सखाओं ने, आप देख लो पेंटिंग बनी हुई, गोप सखा सभी गोप, जितने भी गोप थे वरिष्ठ गोप, सब डंडा लगाए अपने अपने, गाय को हकाल रहे क्या, वो सोचते हैं कि हमने गोवर्धन को उठाया है, कृष्ण ने थोड़ी उठाया अकेला। हालांकि उसके बाद वृंदावनवासी गोवर्धन पूजा के बाद ब्रजवासी, एक पूरा चैप्टर है उसमें, गुणगान करते हैं, तब नंद बाबा बताते हैं कि नामकरण के समय में कौन आए थे, गर्ग मुनि। तो गर्ग मुनि आए थे और उन्होंने बताया था कि बालक जो है स्पेशल है, पूरा बोल दिए थे वहां, तो नारायण के समान है, एक्चुअली बोल रहे थे नारायण इनके समान है, लेकिन यहां पे वो भाव दिखता है यशोदा का और नंद बाबा का भी आगे दिखेगा कि ऐश्वर्य शक्ति कुछ नहीं कर पा रही है। तो कैसे एक मां मान लेगी, कृष्ण का उम्र कितना होगा यहां पे, कितना उम्र होगा महाराज, 2 साल के आसपास, 1.5-2 साल, तृणावर्त को 1 साल में मारे थे, 1.5-1.5 साल में। तो 1.5 साल का बच्चा, आप उसका मुख खोल लीजिए, अंदर ब्रह्मांड दिख रहा है, सोचिए आप लोग का क्या परिस्थिति होगा, तुरंत भाग के जाएंगे, कोई तांत्रिक को बुला के लाएंगे, कुछ पूजा यज्ञ कराएंगे, है कि नहीं। और जब अगली बार ब्रह्मांड देखेगी मां तो क्या करेगी, शिव जी के पास पहुंच गई, सब तांत्रिकों के पिताजी वही है ना, सब वहीं पे शरण लेते हैं, तो शिव जी के पास पहुंच गई चिंताहरण घाट में। लेकिन ये जब परिस्थिति समझेंगे कि छोटा सा बच्चा के मुख में ब्रह्मांड देखा, तो माता यशोदा जिनको मृगनैनी कहा गया यहां पे, मृगशावाक्षी, जिनकी आंखें कैसी हैं, हिरण के बच्चे जैसी। हिरण का बच्चा कभी देखा आपने, कहां देखा, गोकुल में, रमन रेती में जब खेलने जाते हैं तो सामने एक नहीं जू बना हुआ है, वहां घूमते रहते ना, गोकुल में जब खेलने जाते हैं रमन रेती में, उसके बाहर निकलते हैं तो वहां पे जू बना हुआ है, तो हिरण का बच्चा हमेशा घबराया हुआ रहता है, चंचल रहता है, बहुत इधर उधर इधर उधर देखता है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि कैसे है, माता की आंखें अभी अधीर हो रही हैं, धीर नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य देखिए यहाँ पे भी माता यशोदा के प्रेम की सराहना करते हैं, क्यों आंखें बंद करना चाहती हैं यशोदा, भगवान से प्रार्थना करना चाहती है, भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रही है, सुविस्मिता, विस्मित हो गई है, तो भगवान से प्रार्थना कर रही, क्या देख रही हूं मैं, हा? ये मेरे बच्चा, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अवश्य ही रोगग्रस्त है, वो बोल रहे कृष्ण को रोग हो गया है, तो प्रार्थना कर रही है भगवान से। अभी तक कितने असुर मारे कृष्ण ने, पुतना को मारा और छकड़े का वध किया, सकट असुर का और तृणावर्त का, 3 भागवतम में वर्णन है, और तीनों अद्भुत तरीके से हुआ। तो इतना भी देखाने के बाद क्या माता यशोदा, यहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, माता यशोदा के प्रेम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना ऐश्वर्य दिखाने के बाद कभी नहीं मानी, वो तो आगे कितना और ऐश्वर्य दिखा देंगे, कभी नहीं मानेगी यशोदा। ये शुद्ध भक्त होते हैं, उनका जो भाव है। और माता यशोदा वात्सल में सबसे सर्वोच्च स्थान पे है, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि जो सुख जो आनंद कृष्ण ने माता यशोदा को दिया वो किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला वो सुख, पूरा बचपन अपना दे दिया। और ये नहीं कि दे दिया एक बार, इटर्नली शाश्वत रूप से कृष्ण उनकी गोद में खेल रहे हैं। हम अनुभव भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, थ्योरेटिकली भी इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना आनंद और कितना सुख मिला होगा एक छोटे छोटे बच्चे मनुष्य के, जो जड़ बुद्धि है और शरीर जो है मलमूत्र का बना हुआ है, उसको थोड़ा तैयार अयार करके अच्छा कपड़ा पहना दो तो देखते ही ऐसा लगता है आपको कि गोद में उठा लें, होता है ना। छोटा गाय का बछड़ा देखो, ये छोटे बच्चे जनरली कैसे होते हैं, क्यूट से होते हैं। और कृष्ण सोचो, सच्चिदानंद विग्रह, परमानंद घन, वो कृष्ण यशोदा की गोद में खेल रहे हैं, तो क्या सुख दिया है, आनंद देखो। तो इतना गाढ़ है प्रेम। जब हम भक्ति करते हैं तो प्रायः भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव ही होता है हमारा। माधुर्य आने में तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पहले तो ऐश्वर्य को स्टेबल करना है कि कुछ भी हो भगवान की शरण लेना। अभी तो वहां पे पहुंचेंगे, फिक्स्ड अप हो जाएंगे कृष्ण भक्ति में, निष्ठ हो जाएंगे। उसके बाद भक्ति करते 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 ये जो ऐश्वर्य है ये घिसता जाएगा और माधुर्य जागृत होगा। ये स्टेजेस है ना, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये ऐसे बढ़ता जाए। तो माता यशोदा, इतना उनका प्रेम है, वो क्यों, ये इतने ज्यादा प्रेम की वजह से उन्होंने आंखें बंद कर ली और चिंता हो गई। प्रेम जो है वो भी चिंता का कारण होता है, क्योंकि आप जिससे प्रेम करते हैं या इस संसार में बोला जाए तो आप किसी से स्नेह रखते हैं तो उसके बारे में चिंता होती है। सिंपल सा चीज है, आप किसी से स्नेह रखते हैं, मान लीजिए हमारे यहां ब्रह्मचारी भक्त बैठे हैं, आपके माता पिता आते हैं, उस दिन मंदिर में रहते हैं, भक्ति करते हैं, आप उनको स्टेशन पे छोड़ने जाते हो, वो अपने घर कहीं गांव जहां उनको जाना है जा रहे हैं, तो मन में हमेशा एक चिंता लगी रहती है, ठीक तरह से पहुंचे तो नहीं, पहुंचे कि नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। तो ये स्नेह का एक परिभाषा है, ये स्नेह है। तो जिससे माता यशोदा कृष्ण को इतना प्रेम करती है कि थोड़ा सा भी उसमें ऐसा देख लिया तो ये नहीं कि ये बच्चा भगवान है या कुछ है, देवता है, वो चिंतित हो गई और भगवान नारायण से प्रार्थना कर रही। अब यहां पे बताते हैं कि ये जो शक्तियां, ऐश्वर्य शक्तियां भगवान की हैं, उसको माता यशोदा ने अपने प्रेम भाव का दास ही बना दिया। ऐश्वर्य शक्ति आई थी ऐश्वर्य दिखाने, माता यशोदा ने उसको अपने प्रेम का, प्रेम की दासी बना दिया। नहीं कुछ कर पाई वो। कितना लीलाओं में हम देखेंगे कि वो कृष्ण के ऐश्वर्य को बारंबार देखने के बाद भी माता यशोदा को कोई प्रभाव नहीं पड़। दामोदर लीला आएगा अभी दो अध्याय बाद, और कार्तिक में ही दामोदर लीला चैप्टर आएगा, तो उसमें भी बहुत प्रयास किया, ऐश्वर्य शक्ति बंधने नहीं दे रही थी। ठीक है, कितनी देर, माता ने तो हट कर लिया था कि जो भी हो जाए आज तो इसको बांध के रहूंगी। तो जब तक ये डिटर्मिनेशन, ये जिद्दीपन नहीं आएगा हमारी साधना में, कृष्ण कि जो आंखें हैं, कृष्ण के जो कृपा कटाक्ष हैं, हमारी तरफ नहीं झुकते।
और जिद है, करना है मतलब करना है। तो यशोदा ने सवेरे से दोपहर तक लगा दिया मेहनत, लेकिन करना है तो बांधना है, तो बांधना है कुछ भी हो जाए। और अंत में कौन जीता? माता यशोदा। वो सारी ऐश्वर्य शक्तियां फेल हो गई और भगवान बंध गए प्रेम के वश में। तो ये तो है, लेकिन हम क्या सीखते हैं? ये तो एक लीला है, तो लीला का आस्वादन कर रहे हैं। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी करा रहे हैं परीक्षित महाराज को, और हमको उच्चिष्ट मिल रहा है। हम भी थोड़ा कृष्ण भावित होने का, कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन माता यशोदा ने जब देखा तो भगवान नारायण की शरण। ये बार बार पूरे दशम स्कंद में, स्पेशली ब्रज लीला में आप देखेंगे, कुछ भी हो गया ना तो भगवान के पास ही जाते हैं ब्रजवासी, भगवान नारायण या भगवान विष्णु के पास जाते हैं। कोई भी तकलीफ आएगी ब्रज में तो ऐसा ही होगा। अब यहां पे कह रहे हैं कि तीन श्लोक प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, इस तरह असुरों को दंड देने और उनका वध करने के लिए बालक कृष्ण ने नंद महाराज के घर अनेक लीलाएं प्रदर्शित की और ब्रजवासियों को इन घटनाओं का आनंद ब्रजवासियों ने इन घटनाओं का आनंद लिया। और तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं? वो ये लीलाओं को सुनना चाहते हैं। तो हमको भी प्रयास करना चाहिए कि लीलाओं को कितना आस्वादन कर सकते। अब भक्त पूछते हैं कि ये शब्द तो बार बार सुनते हैं, हरि नाम का आस्वादन करो, हरि नाम कितना मधुर है, कृष्ण लीलाओं का आस्वादन करना चाहिए, लेकिन हमको अभी समझ में नहीं आता है। हमको तो आस्वादन भौतिक चीजों में समझ में आता है। और श्रील रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में इसका कारण बताते हैं कि हमारी जीवा पे अविद्या के छाले हैं, अविद्या के कारण हम नहीं समझ पा रहे हैं ये परमहंस संहिता को। तो हमको क्या करना चाहिए वो भी रूप गोस्वामी बताते हैं कि फिर भी करते रहिए, साधना भक्ति में हम लगे रहें। तो शुरू में क्या होता है, हमारे स्टेज पे हम साधक हैं, हमको हरिनाम को हम आस्वादन नहीं कर सकते। कृष्ण को कैसे हम लोग स्वाद कर सकते हैं? कृष्ण भोक्ता है, हम तो भोग्य वस्तु है ना। तो शुरू शुरू में क्या होता है, जब भक्त चालू हो करते हैं 16 माला करना, दीक्षा हो जाती है, फिर वो सोचते हैं कि मुझे टेस्ट क्यों नहीं आ रहा होली नेम में। तो कृष्ण आपको टेस्ट करेंगे कि आप कृष्ण को टेस्ट करोगे? टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? और हमने तो देखा यहां तक कि ये तमोगुण का प्रभाव है, इमोशनल हो जाते हैं कुछ लोग भागवतम सुनने में, हरिनाम जप करने में। वो मेंटल कॉन्कॉक्शन है, वो शुद्ध प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम होता तो 24 घंटा दिख जाता है। वो भावुक हो जाते हैं, दो तरह के बद्ध जीव दो तरह से भावुक होते हैं साधना में। एक इमोशनल हो जाता है, मतलब मेंटल कॉन्कॉक्शन है, दूसरा है कि थोड़ा सा हरिनाम या भागवतम श्रवण से थोड़ा हृदय कई बार ना एक जगह पे शुद्ध हो जाता है सडनली, और फिर वो भाव उमड़ आता है। लेकिन ये बात करना कि हमको टेस्ट नहीं मिल रहा हरिनाम में, भागवतम में टेस्ट नहीं मिल रहा, कैसे हमारा टेस्ट बढ़ना चाहिए, ये प्रश्न बार बार आता है। तो आप क्यों टेस्ट करना चाहते हो? क्या मिलेगा टेस्ट करने से?
आनंद मिलेगा, लेकिन उस स्तर तक तो पहुंचे हम।
अगर आपको रबड़ी का टेस्ट करना है तो पहले तो गाय का सेवा करो, गाय पालो, उसको घास खिलाओ, नहलाओ धुलाओ, देखो कि बीमार ना पड़े, उसको चराने ले जाओ, उसका दूध निकालो, फिर उस दूध को औंटो, उसके लिए अग्नि का प्रबंध करो, फिर दूध औंटा जाएगा, हाँ, उसका जो वाटर वेपर उड़ता जाएगा और धीरे 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 दूध कंडेंस होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और फिर अंत में रबड़ी हो जाएगा। फिर आप उसमें मिश्री डाल के, है ना, और उसको भगवान को भोग लगाओ, तब आप आस्वादन कर सकते हो। अब अगर कोई बोलेगा कि पिताजी ने बोला जाओ गाय चरा के आओ, गाय चराने गए, आस्वादन क्यों नहीं आ रहा? हमें आस्वादन नहीं हो रहा रबड़ी का, तो अभी तो रबड़ी बनी नहीं ना। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, मुझे भागवतम समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मुझे भागवतम याद क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप मालिक नहीं हैं, भागवतम मालिक है। हम कौन हैं? हम सेवक हैं। तो सेवक को अपना सेवा करना चाहिए। इसीलिए चाहे नाम जप करने बैठे या भागवत पढ़ने बैठे, क्या भगवान के सामने आए, ओ आज भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, आज कल नहीं लग रहे थे, हमारे में भेदभाव होता है ना, हमको लगता है आज भगवान ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, तो हमारा ही दृष्टि है ना, दोष है इसमें। तो आचार्य बताते हमारे कि हम जब भगवान के सामने आते हैं इसीलिए आते हैं कि भगवान हमें देखें और शुद्ध करें हमको, और हम क्या सोचते हैं, हम भगवान को देख रहे हैं, हम अपने कृपा कटाक्ष भगवान के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये एटीट्यूड में क्या होता है, ये एटीट्यूड में फ्रस्ट्रेशन आता है, भोगने का प्रवृत्ति है, अनादि काल से भोगने का प्रवृत्ति है, अब भगवान को भी भोगना चाहते हैं, भक्ति को भी भोगना चाहते हैं, और इस प्रोसेस में होता क्या है, आस्वादन होता नहीं है, नाम में टेस्ट नहीं आता, कथा सुनने और पढ़ने में बोलने में टेस्ट नहीं आता, फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन। कोई बोलता है भक्ति तो अपने लिए नहीं है, काम नहीं हो रहा है, फिर वो अंदर ही अंदर एक 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 हॉलोनेस हो रहा है, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है बाहर से, फिर वो सिर्फ कर रहा है, रिचुअलिस्टिक हो जाएगी उसकी भक्ति, क्योंकि एटीट्यूड ही गलत है, भोगने का एटीट्यूड है, सेवक के एटीट्यूड से आना चाहिए। ठीक है, हम चलो आ गए जैसे वो, लेकिन धीरे धीरे हमको शुद्ध होना चाहिए, सेवक के एटीट्यूड में आना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपका कंपनी का मालिक है, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मालिक आज क्यों नहीं आया, इतने बजे क्यों नहीं आया, अरे एक महीना ना, एक साल ना, आपको क्या करना, आपको अपना सैलरी मिल रहा है, 30 दिन काम करो, उसके बाद सैलरी लो, अपना घर जाओ। हम कौन होते बोलने वाले? तो वैसे ही हमारे अंदर ये प्रश्न आना कि क्योंकि ये भोगने का इच्छा से आता है, तो हमको सेवा का इच्छा जो है वो लाना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी, आप देखिए प्रभुपाद जी भले इन चीजों को बोले हैं, लेकिन कई बार मिस हो जाता है, हम ध्यान नहीं देते। चैंटिंग के लिए एक्चुअली एक बार एक भक्त, प्रभुपाद जी हमेशा प्रेरित किए भक्तों को कि प्रश्न पूछो प्रश्न पूछो। एक बार प्रभुपाद अपने रूम में बैठे कुछ कार्य कर रहे थे, एक भक्त आया, प्रभुपाद जी का शिष्य आया, प्रश्न पूछा, प्रभुपाद एकदम क्रोधित हो गए, कुछ सिखाना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी, एकदम भड़क गए, हाँ? बोले तुम रास्कल शिष्य हो, अरे प्रश्न ही तो पूछ रहा है, अरे यार रास्कल डिसाइपल, क्यों तुम पढ़ते नहीं मेरी बुक्स, उसमें पूरे आंसर दिए हैं, क्यों आके मेरे को इधर तंग कर रहे हो, आप सोचो कोई भी भक्त प्रश्न पूछने आए तो ऐसे थोड़ी हम ट्रीट करेंगे। तो प्रभुपाद जो शुद्ध हैं पूर्ण तरीके से, वो क्यों ऐसे ट्रीट कर रहे हैं किसी को? प्रश्न ही पूछ रहा है, आपका दीक्षित भक्त है, प्रश्न पूछ रहा है, क्या दिक्कत कर दिया? लेकिन प्रभुपाद जी को सिखाना चाहते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ सिखाना चाहते हैं कि पढ़ो, उसमें सब दिया है। मैं एक भक्त से मिला, वो सोलह माला, मैं बोला कितना साल हो गया सोलह माला करते हुए? 6 साल। अभी मंदिर ज्वाइन करना चाहता हूँ, किसी और मंदिर में। तो मैं बोला वो मुझसे पूछने आया था, मैंने कहीं लेक्चर दिया तो लेक्चर सुन के कुछ बाद में मिलने आया, प्रश्न ऐसे ऐसे पूछ रहा था कि आप कहाँ से पढ़ते हो, कैसे स्टडी करते हो, कैसे तैयारियां करते हो अपने लेक्चर की। तो मेरा पेपर देख लो, कुछ नहीं लिखा इसमें। मैंने कहा कितने साल हो गए सोलह माला जप करते? बोला 6 साल हो गए। मैं 6 साल में प्रभुपाद जी के कितने लेक्चर सुन लिए? मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। 6 साल में उसने एक ही लेक्चर सुना प्रभुपाद का, और मैं बोला वो भी तभी सुना होगा जिस दिन छुट्टी रही होगी, गलती से आ गया होगा मंदिर भागवतम और प्रभुपाद का होगा, मैंने बोल दिया। उसने बोला हाँ। तब कैसे आंसर मिलेगा? अब आप ज्वाइन कर रहे हो मंदिर, 6 साल हो गए, 6 साल में आपने लेक्चर नहीं सुना प्रभुपाद का, तो ग्रंथ कितना पढ़ा होगा? फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेते हैं। तो प्रभुपाद जी अच्छा वो 1972 बोले भक्ति शास्त्री पढ़ाने के लिए, कलयुग में ऐसे ही है। तो प्रभुपाद ने सिंपल कहा जब कैसे करना है, प्रभुपाद बोले जस्ट सिट चैंट एंड हियर, बैठो जप करो और सुनो और कुछ मत सोचो। किसी ने पूछा था, मालती माता जी ने पूछा था, हम क्या सोचें और क्या करें जप करते वक्त, हम क्या करें और क्या सोचें? प्रभुपाद जी बोले कुछ मत करो, कुछ मत सोचो। एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी जप करते हैं तो मन भाग जाता है, प्रभुपाद बोले यहां से जप निकलना है, हरिनाम की आवाज यहां से निकलनी है, मुख से कान में जानी है, 3 इंच का डिफरेंस, किधर, मन तो यहां ही नहीं, इन दोनों के बीच में, कैसे तुम्हारा मन भाग रहा है तो भागने दो। इतना सिंपल लॉजिकल, फिर भी वही प्रश्न, वही कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है। तो एक साधक का मूड क्या होना चाहिए, प्रभुपाद जी ने पूरा विस्तार से अपने ग्रंथों में दिया है। हम अगर उसको, इसलिए प्रभुपाद जी बोले स्टडी माई बुक स्क्रूटनाइजिंगली, प्रभुपाद जी बोले रीड माई बुक्स, बट प्रभुपाद जी स्टडी शब्द भी यूज किए हैं। भगवद गीता के प्रीफेस के पहले पैराग्राफ में लास्ट की 3 लाइनों प्रभुपाद लिखते हैं स्टडी शब्द, दिस ग्रेट बुक ऑफ नॉलेज, प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता जो पढ़ेगा अच्छे से, वो भगवद गीता जैसे ही पूरी होगी उसको कृष्ण प्रेम मिल चुका होगा। हमने तो 5-5, 6-6 बार गीता पढ़ी है, मिला कृष्ण प्रेम, मिला थोड़ा सा मिला है बोल रहा हूं। तो यानी कि प्रभुपाद ने सब बताया है कैसे करना है क्या करना है, हम उसको ध्यान से बस पढ़ें और प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने, सब दिया हुआ है उसमें। प्रभुपाद एटीट्यूड क्लियर करते हैं, जब वो इंसिडेंट सबको पता है, जब प्रभुपाद जी लेक्चर दिए और लेक्चर में बोलते हैं कि गुरु का कभी फॉल डाउन नहीं होता, और लेक्चर के बाद प्रभुपाद जी डीटीस के सामने जाते हैं और कुछ प्रार्थना करते हैं, तब भक्त ने पूछा क्या प्रार्थना किया प्रभुपाद आपने? भक्त नह नए थे तो अच्छा है लोग पूछे तो हमको पता पड़ा। वेस्टर्न डिसाइपल्स ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, ऑ एंड रिवरेंस था, लेकिन वो डायरेक्ट पूछ लेते थे तो हमको पता पड़ा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्रभुपाद कहे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा कभी पतन ना हो, मुझे हमेशा सुरक्षा प्रदान करे भगवान। बट प्रभुपाद आपने तो कहा गुरु का पतन नहीं होगा, बोले इसीलिए तो प्रार्थना कर रहा हूं इसीलिए पतन नहीं होगा। यानी उस स्थिति पे आप देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमको, सिखा रहे हैं कि एक साधक को क्या होना चाहिए। तो हम दिन में 3 या 4 बार भगवान का दर्शन लेते हैं तो हम प्रार्थना करें अपनी सुरक्षा के लिए। एक बार प्रभुपाद जी का वीजा फॉर्म भर रहे थे, एक भक्त अमेरिकन डिसाइपल था, तो वीजा फॉर्म भरते भरते कुछ डिटेल पूछनी होती है, तो लिख रहे था जितना पता था लिखते जा रहा था, फिर सडनली उसमें एक क्वेश्चन था, एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड? प्रभुपाद जी को पूछता है प्रभुपाद एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या? प्रभुपाद बोले रास्कल, हम जिस देश में रहते हैं वहां पे पुलिस चौकी के अंदर जाना उसमें बदनामी हो जाती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड का पूछ रहे? बोले अपना गुरु से ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो ठीक है, सब नए नए भक्त थे तो ऐसा है। तो क्लियर होना चाहिए हमको कि किस हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, और श्रील प्रभुपाद एटीट्यूड के बारे में कहां लिखते हैं, लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन में, द एडवांसमेंट ऑफ अ डिवोटी, द एडवांसमेंट ऑफ अ प्रैक्टिशनर डिपेंड्स ऑन हिज एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड क्या है? देखो, सिर्फ चैंटिंग करना, रीडिंग करना, मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, आफ्टरनून प्रोग्राम, सब कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जितना जागृति में करेंगे, जितना हमारा एटीट्यूड सही रहेगा, ग्रोथ जल्दी होगा। कल एक भक्त फोन किया किसी मंदिर से, ब्रह्मचारी है, 2-3 साल हुआ ज्वाइन के, बोले बहुत तकलीफ में हूँ, मन इधर उधर भटक रहा है, ऐसा लग रहा है भक्ति में कुछ प्रगति नहीं किया हूँ। मैं बोला 10 साल पहले कितना माला जप करता था? बोला एक भी नहीं। बोला 8 साल पहले? 7 साल पहले एक माला, फिर 2 माला, फिर 4 माला, फिर 16 माला, फिर निभक्त ट्रेनिंग दिया, फिर आश्रम ज्वाइन किया, जॉब छोड़ा, घर छोड़ा, कैसे बोलते आप भक्ति में प्रगति नहीं किया? ये वैराग कहां से आया? लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं है, खुश हो रहा है। तो है, प्रगति हो रहा है, लेकिन उसको और बढ़ाना चाहिए। तो मैंने बोला अपने मन को बोलो कि ठीक है, भक्ति में प्रगति नहीं हो रहा है, कम से कम कर्मी तो नहीं हूं, भक्ति में जैसे तैसे पढ़ा तो हूं, मंदिर में वैष्णव के चरण में पढ़ा हूं, बाहर जाने से तो बहुत अच्छा है ना। तो इसीलिए ये तो एक हो गया, लेकिन हम भक्ति में आगे कैसे बढ़े वो हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा, और वो सब प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में, अपनी वाणी में सब दिया हमको। तब हम इस भागवतम को आस्वादन कर पाएंगे, तब हम असली में आस्वादन कर पाएंगे। अभी तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, प्रारंभ हुआ है, आगे चल के भागवतम को और आस्वादन करना है। ये भागवतम इतना मधुर है, एक एक श्लोक, तो धीरे धीरे होगा। अभी हरिनाम क्यों जप करते हैं? ओ, एक भक्त गुड़ाकेश्वर है ना, गुड़ाकेश्वर बोलते हैं कि माया चाकू लेके पीछे पड़ी है, ये अमराज तलवार लेके पीछे पड़ा है, तो इसीलिए जप करते हैं, इसीलिए बचाओ बचाओ करते हम जप करते रहते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे होता है कि मेरा शुद्धिकरण होगा, ये होगा, वो करते 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 करते, जो भी जिस तरह से भी अपने स्टेज में आगे बढ़ते बढ़ते वो परिस्थिति आना कि बैठ गए और हरे कृष्णा जप कर रहे हो, और आध्यात्मिक जगत से तुरंत कनेक्शन बैठ जाता है, वो हता आस्वादन कर। तो वहां तक पहुंचना है और पहुंचेंगे, अगर लगे रहेंगे तो पहुंचेंगे। ट्रेन में चल रहे हो, ट्रेन धीरे चल रही है, ठीक है, आगे स्पीड बढ़ेगी, नहीं भी बढ़ेगी धीरे धीरे, तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ट्रेन से उतरो मत, ट्रेन से उतरने की आवश्यकता नहीं, ट्रेन से उतर गए तो फिर पहुंचोगे नहीं, ठीक है। तो हम यहां देखते हैं कैसे माता यशोदा के प्रेम ने, प्रेम भाव ने ऐश्वर्य शक्ति को भी दासी बना दिया, और माता यशोदा क्यों चिंतित हो गई? क्योंकि उनका प्रेम कृष्ण के प्रति था, और उस चिंता के कारण उन्होंने आंख बंद करना चाहा, भगवान नारायण को प्रार्थना किया कि हमारे पुत्र की रक्षा करो, कोई बीमारी हो गया है, ये कैसा हो गया? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, किसी भक्त का कोई कमेंट? श्रील प्रभुपाद की।